ये मशीनरी मशीनी रेशम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको आप पहन सकती हैं। लेकिन ख्याल ये करना है कि जो लिबास भी आप पहने वो हिजाब इस्लामी को पूरा करता हो। चुनाचे जो औरतें आम जिंदगी में ही अपना हिजाब वाला लिबास पहन के नामहरम के सामने आती, वही उनका एहराम, कोई हर्ज नहीं है, यानी उनके लिए कोई अलग से चीज नहीं। मार्केट में औरतों के एहराम के नाम से एक चादर मिलती, वो सिर्फ उन खवातीन के लिए बनाई जाती जो आम जिंदगी में या तो हिजाब करती नहीं है या करती है मगर मुकम्मल हिजाब नहीं होता, लंगड़ा लूला टाइप का हिजाब होता है कि मालूम हुआ कहने को सर पे दुपट्टा या स्कार्फ है लेकिन बालों के गुच्छे नजर आ रहे, तो एक खास चादर बनाई जाती। ये चादर का हज उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ हिजाब पूरा हो, पूरे हिजाब के साथ औरत को हज पे जाना। अब कहां गए बच्चे? अब देखिए वो चादर कैसी हो, इसका भी कोई किसी किस्म का डिजाइन इस्लाम ने नहीं रखा। जैसे इस मजमे में बहुत सी खवातीन अबा पहने नजर आ रही, यही एहराम। सही तरीके से बुरका पहना हो, वही एहराम। और ढंग से अगर कोट और स्कार्फ पहना हो, वही एहराम। हमारे यहां नमाज की चादर जो खवातीन की होती, वही एहराम। फिर बता दूं कि औरत के लिए सिले हुए कपड़े जायज है, इसलिए उसके लिए कोई एहराम नहीं। मर्द के लिए सिले हुए कपड़े हराम थे, इसलिए उसको ये कुर्ता शलवार उतारना पड़ रहा। अब आम तौर पर एहराम के नाम से जो चादर बाजार में है, जिसकी आप में से उन औरतों को जरूरत नहीं है जो आम जिंदगी में मुकम्मल बुरका या मुकम्मल अबा पहनने की आदि, लेकिन चूंकि सफेद चादर या सफेद रंग बेहतर और अबा और बुरके आमतौर पर सफेद नहीं होते, इसलिए यह चादर इस्तेमाल की जाती। हत्ता यह कि जो खवातीन अपने बुरके और अबा ही को एहराम बनाना चाहे, ऊपर से यह चादर पहन ले ताकि सफेद वाला सवाब भी मिल जाए। ये चादर है क्या? ये चादर अजब, आजकल आपको मालूम है कि दुनिया में हर चीज में कमर्शलिज्म आ गया। हलाल प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, हिजाब के नाम पे इतना कमर्शलिज्म कि ब्रांडेड कंपनियां हिजाब के नाम पे मैदान में आ रही। तो बहुत से लोगों ने इस चादर को भी पैसे कमाने का जरिया बनाया है, शरण ये कुछ नहीं। इसका मकसद सिर्फ एक है कि आम पाकिस्तानी औरत अपनी आम जिंदगी में जिन चीजों की जानिब से लापरवाह है, हिजाब में कम से कम हज में वो ना होने पाए, यानी बाल मुकम्मल तौर पे ढके हुए हों। जो मजमा मेरे सामने है उसके लिए मसले की इतनी जरूरत नहीं, गर्दन मुकम्मल तौर पे ढकी हो कानों समेत, क्योंकि हिजाब में औरत को सिर्फ अंगूठे और बीच वाली उंगली के दरमियान जो चेहरा है इतना खोलने की इजाजत है हिजाब में, आम जिंदगी में भी। तो ये चादर का मकसद यही है कि सिर्फ इतना ही हिस्सा खुला रहे, और फिर यह कि ये दोनों हाथ ये इस तरह से ढके हुए हों कि अल्लाह अकबर के लिए अगर हाथ उठाना पड़े तब भी कलाई न खोले। और साथ में ये चादर इस तरह की हो कि मजमे में जब औरत तवाफ कर रही है या सही कर रही तो मजमे की वजह से चादर जो है खुलने ना पाए। भाई ये दो तीन चीजें पूरी करने वाली कोई भी चादर आप खरीद लें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो औरतें आम जिंदगी में अबा और बुरका पहनती वो सफेद अबा और सफेद बुरका सिलवा लें, वही उनका एहराम। अब सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए कि आज औरतों के लिए भी कोई मसला बयान किया गया, मैं इस मसले को शुरू कर रहा हूं। तो चादर एक ऐसी चादर है, कि जो पूरे जिस्म को घेरे में लेती है और इसको आगे से सी दिया जाता ताकि चलने में और मजमे में ये चादर खुलने ना पाए। जब इसको आगे से इस चादर को आगे से सी देंगे तो ये पूरी एक घेरदार चादर बन जाएगी, चुनाचे इसको पहनने के लिए इसको सर के ऊपर से ही जिस्म पर लाया जाएगा। अब बतौर मॉडल हमारे ये साहबजादे हमारे सामने हैं, देखिए ये चादर है, ये कैसे पहनी जाती है आपको नहीं पता, तकलीफ तो नहीं हो रही, कुछ नहीं है इस चादर में, आम सी चादर थी, आगे से थोड़ी के पास से लेके नीचे लंबाई के आखिर तक इसको इस तरह सी दिया गया है कि हवा चलने से मजमे में फंस जाने से ये चादर खुलने ना पाए। अब इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि ये दोनों हाथ इतने इसमें छुप जाए कि जब कभी नमाज तवाफ के वक्त थोड़ा ढीला छोड़िए, अल्लाह अकबर कही, अल्लाह अकबर, आप अपने हाथ उठाएं तब भी आपकी कलाइयां छुपी रहें, ये इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर इसकी लंबाई कम हो गई तो अल्लाह अकबर के वक्त कलाइयां खुल जाएंगी। दूसरी बात यह कि साइड से भी यह चादर इस तरह से हो कि कान और रुखसार का थोड़ा सा हिस्सा छुप जाए। और ये चादर आगे से पेशानी पर इस तरह है कि बाल छुप जाए और नीचे थोड़ी सी चिन या थोड़ी। अच्छा, अब इसके बाद ये चादर जो कि आगे से सी ली गई तो घेरदार बनी, इसको सर के ऊपर से पहना जाता जिस्म पर अभी तो आ गई, लेकिन मजमे में इस चादर के इस तरह सरक जाने के बाल नजर आने लगे या नीचे हो जाए तो गर्दन या गला नजर आने लगे, इसके चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए सपोर्ट देने के लिए इस चादर में ये एक इलास्टिक लगाई जाती है और ये इस तरह की होती है कि ये पीछे घूम जाइए, ये इलास्टिक सामने लगाई जाती है और ये पीछे इस तरह से सर पे आती है कि यहां मजबूती से जम जाए। इस बच्चे ने बाल नहीं कटवाए ना काफी दिनों से, इसलिए मसला हो रहा है। अच्छा, आप जुमे को कटवाते हैं इतवार को? अच्छा। और दूसरी बात यह है कि साइड पर ये इलास्टिक और ये डोरियां, इलास्टिक का काम है ये पीछे जाके सर पे आ जाए और डोरी का काम है कि ये आगे चिन या थोड़ी के नीचे इसको इस तरह मजबूती से टाइट कर ले कि ये चलते फिरते एक्सीडेंटली भी चादर हिलने ना पाए। फिर भी अगर ये चादर हट गई ये सारी एहतियात के बाद तो ना कोई गुनाह मिलेगा ना कोई हज और उमरे में फर्क पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये मसला तो मैं सिर्फ इसलिए बताता हूं कि औरतों को ये इत्मीनान रहे कि कुछ उनके मसले भी आ गए, वरना 90% इस मजमे की खवातीन अपने घर में नमाज के लिए तकरीबन ऐसी ही चादर पहनती होंगी आम जिंदगी। सिर्फ यह है कि ये इलास्टिक वाली एहतियात घरों में जरूरत नहीं है, वहां मजमे में जरूरत है। और शायद ये डोरियां भी हर एक की नमाज की चादर में ना हो। मैंने नमाज की चादरें देखी हैं जिसके अंदर कलाइयां खुल जाती बहुत ऊपर होती है चादर, और ऐसी चादरें देखी हैं जो बहुत ही बारीक होती, तो बहरहाल उसमें भी नहीं होनी चाहिए, नमाज में भी और हज में भी। अब इसके बाद असगर अब्बास साहब ने पहली क्लास में यह बताया होगा कि गुमशुदगी के वाकयात खास तौर पर हज के दूसरे हिस्से में बहुत होते हैं, तो अब हत्तल इम्कान हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी निशानियां हर मर्द और औरत के इहराम वाले लिबास पर, احرام کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی تو 15 لاکھ عورتیں یہی لباس پہنے ہوئے ہوں سب ایک جیسی نظر آئیں گے. اگر کوئی عورت کھو گئی کسی مرحلے پر تو کاروان ابوظہبی کیسے ڈھونڈے گا اس کو؟ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں خواتین کے احرام. نمبر 1 یہ ایک اسٹیکر آپ کو دیا گیا ہے کہ چادر کے پیچھے آپ کو اپنی بیک پر کمر کے اوپر اس کو سی دینا ہے, گلو سے لگا دینا ہے, بہرحال اس کو اس کے اوپر چپکا دینا. نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ صرف خواتین کے لیے. نمبر 2 آپ کو بیچ دیا جائے گا جو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے, وہ آپ کو احرام کی چادر کے آگے سیفٹی پن کے ذریعے سے پہننا, تو اس میں تو کوئی خاص چیز نہیں. نمبر 3 چادر کا جو حصہ سر پہ جا رہا ایک چھوٹا سا گرین کلر کا کپڑا ہے اس کو آپ کو وہاں سینا اس طرح سیجے گا کہ جب چادر پہنے تو وہ سر پر آئے. وجہ نہیں آپ غلط نہیں ہوتا چلے بن جائیے شاباش. وجہ حج کا دوسرا حصہ جو خیموں میں رہنا پڑتا وہاں زمین جو ہے وہ بہت زیادہ اونچی نیچی ہے, ایک سڑک اتنی اونچی ایک سڑک اتنی نیچی, تو جب کسی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اگر وہ جو راستہ کھو گئی خاتون وہ نیچے کی سڑک پر ہم لوگ اوپر کی سڑک پر, تو اس وقت نہ تو سامنے سے بیج نظر آتا ہے نہ پیچھے کا اسٹیکر اوپر, اس وقت یہ سر کا کپڑا بہت کام آتا. اس کے ساتھ ہی خواتین کی حد تک یہ مسئلہ آج کا مکمل ہوا. اب دیکھیے مردوں کو سب کو بلا لیجیے, خاص طور پہ واش روم میں دیکھیے گا جو آپ لوگ حج میں کرتے ہیں. حج میں اکثر یہی ہوتا ہے, بس میں معلوم ہے دو آدمی ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہیں وہ واش روم میں بیٹھے. اچھا اب خواتین بیٹھیے, اب میں مردوں کے احرام کا مسئلہ شروع کر رہا ہوں, مگر اس سے پہلے 5 منٹ کا ایک بریک اپنے لیے لے رہا ہوں جو جس کی مجھے ضرورت نہیں. ایک اہم انتظامی اعلان جو اصغر عباس صاحب کو کرنا ہے, اگر ہم اسے تقریر کے آخر میں رکھیں تو جو خواتین اس وقت جانا چاہتی اور جو جا سکتی ہیں اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ان کو اتنی دیر تک بلا وجہ بیٹھنا ہوگا اور کراچی کے حالات اور خاص طور پر آج کل کے حالات, تو یہ 5 منٹ کا بریک میں اپنے لیے لے رہا ہوں, لیکن اپنے لیے نہیں مجھے ضرورت نہیں, صرف یہ ایک انتظامی اعلان پورے قافلے تک پہنچ جائے. اس کے بعد خواتین میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھے, جو جانا چاہے چلی جائیں. اعلان یہ ہے کہ اب عورتوں سے متعلقہ کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو عورت مرد دونوں کے لیے, اب وہ مسئلے آئیں گے جو خالی مردوں کے لیے ہوں. لیکن اصغر عباس صاحب کی تقریر کے بعد ایک تو درود بھیج دیں.